आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अन्विता कुमारी और आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक का पाठ 5 जिसका नाम है मैं क्यों लिखता हूँ। स्टूडेंट्स, यह एक निबंध है और इसके लेखक हैं अज्ञेय जी। तो पहले हम अज्ञेय जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनका जन्म सन 1911 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया कुशीनगर इलाके में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा जम्मू कश्मीर में हुई और बीएससी लाहौर से की। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण अज्ञेय को जेल भी जाना पड़ा। तो बच्चों, ये जो अज्ञेय जी हैं, इनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। और इनका जन्म हुआ था 1911 यानी 1911 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का एक छोटा सा कस्बा है कसिया कुशीनगर के पास। आपने सुना होगा ये जो इलाका है ये असल में गोरखपुर के पास पड़ता है, ठीक है। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यानी शुरुआत की जो शिक्षा थी वो जम्मू कश्मीर से ली और ग्रेजुएशन यानी बीएससी की डिग्री इन्होंने लाहौर से ली। क्रांतिकारी आंदोलनों में ये भाग लेते रहते थे, यानी देश के आज़ादी के समय आज़ादी की लड़ाई के लिए जो आंदोलन हो रहे थे, जो जुलूस निकलते थे, उसमें ये इनका बहुत योगदान था। ये भाग लेते ही रहते थे और इस वजह से इनको जेल भी जाना पड़ा था। साहित्य एवं पत्रकारिता को पूर्णतः समर्पित अज्ञेय ने देश विदेश की अनेक यात्राएं की। उन्होंने कई नौकरियां की और छोड़ी। आज़ादी के बाद की हिंदी कविता पर अज्ञेय का व्यापक प्रभाव है। कविता के अलावा इन्होंने कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना आदि अनेक विधाओं में भी लेखन किया है। तो ये किसको समर्पित थे? साहित्य और पत्रकारिता को। ये अपना अपने लेखन को, पढ़ने को, इसी चीज को सब कुछ मानते थे। इन्हें पत्रकारिता भी बहुत अच्छी लगती थी, यानी कि जनता तक सही सूचनाएं पहुंचाना, अच्छी अच्छी चीजें लिखना, उनको पढ़ना, ये सब इन्हें पसंद था। और इसी के लिए, अपने ज्ञानवर्धन के लिए इन्होंने बहुत से देशों की यात्राएं भी की थी। ये किसी एक नौकरी में नहीं डटे रहे, इन्होंने कई नौकरियां की, छोड़ी, कई की और छोड़ी, है ना। इन्होंने हिंदी कविता तो लिखी ही है, इसके साथ में इन्होंने कई विधाओं में लिखा है, जैसे इन्होंने कहानियां लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, है ना, यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, निबंध लिखे हैं, आलोचनाएं लिखी हैं। आज़ादी के बाद जो कविता बच्चों हिंदी में आई, मतलब हिंदी के कवियों ने जो आज़ादी के बाद लिखना शुरू किया, उसमें इनका व्यापक प्रभाव, यानी इनका प्रभाव दिखता ही दिखता है और वैसा ही लिखते हैं। वहाँ के लेखक पे भी इनका प्रभाव है, इनको इनके लेखनी में भी ये दिखता है कि इन्होंने क्या सब देखा है, भारत की क्या क्या स्थितियाँ इन्होंने देखा है, वो सारी चीज़ें उसमें पता चलती हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं भग्नदूत, चिंता, अरि ओ करुणा, प्रभामय, इंद्रधनु रौंदे हुए, आंगन के पार द्वार। ये इनके काव्य संग्रह हैं, ठीक है, काव्य संग्रह यानी इसमें इनकी कविताएं हैं। और फिर इनके उपन्यास कौन से हैं? शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप, ठीक है, शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप। कहानी संग्रह कौन से हैं इनके? विपथगा और शरणार्थी जैदोल। फिर इनका एक यात्रा वृत्तांत है अरे यायावर रहेगा याद। अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक सहित 4 सप्तकों का समकालीन हिंदी कविता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अज्ञेय को अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी पुरस्कृत किया गया। सन 1987 यानी 1987 में उनका देहावसान हो गया। बौद्धिकता की छाप अज्ञेय के संपूर्ण लेखन में मिलती है। उनके लेखन के मूल में व्यक्तिकता की पहचान की समस्या है, ठीक है। तो उनकी प्रमुख रचनाएं भी हमने देख ली और हमने ये भी देखा कि वो तार सप्तक का संपादन करते थे। उन्हें बहुत से महत्वपूर्ण पुरस्कार जैसे साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। 1987 में इनका निधन हो गया था। और बौद्धिकता की छाप यानी जो इनका इंटेलेक्चुअलिटी थी, है ना, इनका बौद्धिक स्तर तो था, वो अलग ही लेवल पे था, बहुत ऊंचे स्तर पे था और वो हमें इनकी सारी रचनाओं में देखने को मिलता है। इनकी रचनाओं में वैयक्ता की पहचान की समस्या है, यानी कि वो निजी होकर नहीं लिखते बल्कि समाज को साथ लेकर लिखते हैं। अब थोड़ा सा पाठ परिचय देख लेते हैं, मैं क्यों लिखता हूँ ये क्या है। हिंदी में एक समय इस पर चर्चा हुई थी कि लेखक क्यों लिखता है, किसके लिए लिखता है, उसके लेखन का प्रयोजन क्या है। अज्ञेय का यह निबंध भी उसी बहस से जुड़ा है। ठीक है, तो हिंदी के साहित्य को लेकर एक बार ये चर्चा हो रही थी कि जो लेखक होता है उसके लिखने का क्या कारण होता है, किस वजह से लिखता है, क्यों लिखता है और किसके लिए लिखता है। ये सारी चीजें जब चर्चा की जा रही थी तो उसी बात का कहीं ना कहीं जवाब देने के लिए, उत्तर देने के लिए अज्ञेय ने ये निबंध लिखा। अज्ञेय ने अपने इस छोटे से निबंध में यह बताया है कि रचनाकार की भीतरी विवशता ही उसे लेखन के लिए मजबूर करती है और लिखकर ही रचनाकार उससे मुक्त हो पाता है। अज्ञेय का मानना है कि प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करता है तभी रचना पैदा होती है। अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती, परंतु जरूरी नहीं कि हर अनुभव अनुभूति बने। अनुभव जब भाव जगत और संवेदना का हिस्सा बनता है तभी वह कलात्मक अनुभूति में रूपांतरित होता है। अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता के उदाहरण द्वारा अपनी बात स्पष्ट की है। तो अज्ञेय जी ने क्या बताया है इस छोटे से निबंध में कि रचनाकार की भीतरी विवशता, यानी अंदर से उसे कुछ ऐसा महसूस होता है कि वो विवश हो जाता है ना, मजबूर हो जाता है लिखने के लिए, तभी वो कुछ भी रचना जो है वो करता है। और उनका ये मानना है जब प्रत्यक्ष अनुभव होता है ना तभी वो अनुभूति का रूप धारण करके रचना बनती है। यानी अगर हम कोई चीज अनुभव कर रहे हैं, कुछ हमने अच्छा देखा है, कुछ बुरा देखा है, समाज में कुछ परिवर्तन होते हुए देखें, तो वो जो चीजें हम महसूस कर रहे होते हैं, अनुभव कर रहे होते हैं, उन्हीं की अनुभूति बन के वो रचना पैदा हो जाती है। लेकिन जरूरी नहीं होती कि सारे अनुभव जो हमने किए हैं उन सब पे हम रचना करें, सारी अनुभूति बने, है ना। ये हमारे भावों को, संवेदनाओं को जब जगाते हैं तभी कलात्मक रूप में एक रचना बन के सामने आते हैं। और ये जो निबंध है इसमें एक जिक्र आएगा, हिरोशिमा कविता लिखी थी अज्ञेय जी ने, तो उसमें उन्होंने बात स्पष्ट की है कि हिरोशिमा में जो हमले हुए थे, जो बम गिराए गए थे हिरोशिमा में, तो उसके बाद जो वहाँ का दृश्य देख के किसी का मन होता है ना वो पसीस जाता है, दुख होता है, तो उस दर्द को बयां करने के लिए उन्होंने कविता लिखी। तो यही उनका अनुभव एक रचना बन के सामने आया, ऐसे ही लेखक ने समझाया है। ठीक है, आइए अब पाठ शुरू करते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय जी का एक निबंध, और सबसे पहले आप लोग पेज नंबर 42 पर आ जाइए। ठीक है, तो पेज नंबर 42 पे शुरू करते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ, यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है पर बड़ा कठिन भी है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं है, ना जाने संभव भी है या नहीं। इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। क्या कह रहे हैं वो कि मैं क्यों लिखता हूं, ये प्रश्न आसान तो लगता है लेकिन बड़ा कठिन है। असल में इस बात का जवाब पाना कि कोई भी लेखक क्यों लिखता है ये बहुत कठिन है, क्योंकि इसका उत्तर कहाँ से जुड़ा होता है, लेखक के आंतरिक जीवन में, अंदर उसने क्या महसूस किया, क्या देखा, वो क्या झेल रहा है, ये सारी चीजें निर्भर करती हैं लेखक को लिखने के लिए। तो वो कहते हैं कि इतनी सारी चीजों को संक्षेप में यानी छोटा करके शॉर्ट में बता देना आसान तो नहीं है कि वाक्यों में हम बस कुछ वाक्यों में शब्द लिख दें और बात पता चल जाए, आसान तो नहीं है। लेकिन मुझे तो ये लगता है ये इतना कठिन है कि संभव है या नहीं, ऐसा तो नहीं है ये इतनी कठिन काम है कि इस असंभव ही है बिल्कुल बताना। तो इसके लिए कितना कर सकते हैं हम लोग, बस इतना कि कुछ चीजों का स्पर्श किया जाए, यानी बस कुछ अनुभवों को हम छूकर यहाँ बयां कर दें, और खासकर उनको जो दूसरों को जानना आवश्यक है, उपयोगी हो सकता है, यानी दूसरे ये समझ पाए कि असल में कोई भी जो लेखक है वो अपनी रचना क्यों करता है, क्यों लिखता है, बस दूसरे को ये समझ में आ जाए। एक उत्तर तो यह है कि मैं इसीलिए लिखता हूं कि स्वयं जानना चाहता हूं कि क्यों लिखता हूं, लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता है। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है, लिखकर ही लेखक उस आभ्यंतर विवशता को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा, और लिखकर ही उससे वह मुक्त हो जाता है। क्या कह रहे हैं कि मैं क्यों लिखता हूं, इस बात का एक उत्तर यह हो सकता है कि मैं स्वयं जानना चाहता हूँ कि क्यों लिखता हूँ। यानी लेखक जो है पहले उसे खुद अपनी रचना का, अपने लिखने का उद्देश्य पता होना चाहिए कि आखिर वो क्यों लिख रहा है, क्यों कोई रचना कर रहा है ना। अगर उसे स्वयं कोई उत्तर नहीं मिलेगा तो वो दूसरों को इस बात को कैसे समझा पाएगा। इसीलिए वास्तव में यानी असल में सही उत्तर, सच्चा उत्तर तो बस यही है कि लेखक को खुद भी जानना होता है कि वो क्यों लिख रहा है। और जब उसे लिख देता है तभी जो लेखक के अभ्यंतर यानी अंदरूनी, अंदर की जो विवशता है, वो अपनी विवशता को पहचानता है कि मैंने क्यों लिखा, मैं क्यों मजबूर हुआ, मुझे क्या महसूस हुआ, इसी किस कारण मैंने लिखा, ये सारी चीज़ें उसे पता चलती हैं। और जब वो लिख देता है, अपने विचारों को व्यक्त कर देता है, तभी वो इस विवशता से, जो बेचैनी उसे महसूस हो रही होती है, उससे वो मुक्त हो पाता है। मैं भी उस आंतरिक विवशता से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूँ। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, ना उनका सब लेखन ही कृति होता है, सभी कृतिकार इसीलिए लिखते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि मेरा विश्वास है सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं, लेकिन सभी कृतिकार, सारे लेखक कृतिकार नहीं होते, कुछ सिर्फ लेखक होते हैं। क्यों? कृतियां क्या होती हैं? जो रचनाएं बन जाए, महान रचना। लेखक तो वो कुछ भी हो सकता है ना, जो कोई कुछ भी लिख दे। अगर आप किसी की बताई हुई चार लाइनें लिख रहे हैं तो शायद आप भी लेखक कहे जाएं, लेकिन आपकी वो कृति नहीं होगी, आप कृतिकार नहीं हो जाएंगे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि सारे लेखक कृतिकार नहीं हो सकते और ना ही सारे लेखन या सारी रचनाएं कृतियां हो सकती हैं। इसीलिए उनका मानना है कि अगर कोई कृतिकार है वो तो बस इसीलिए लिखता है कि उसे खुद भी पहचानना होता है अपनी आंतरिक विवशता को। यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की विवशता से भी लिखा जाता है, संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकता से। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है, कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। दूसरे यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष का निमित्त बन जाता है। वो क्या कह रहे हैं कि यह भी ठीक है कि जब ख्याति मिलने लगती है, यानी जब प्रसिद्धि होने मिलने लगती है ना, किसी कोई फेमस हो जाता है, बहुत प्रसिद्ध होने लगता है, तो कभी कभी उसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाहर की चीजें भी उसे विवश करती है लिखने के लिए, है ना, तब वो सिर्फ आंतरिक विवशता नहीं रह जाती। और ये बाहरी जो विवशताएं हैं वो कैसी हो सकती हैं? जैसे कोई संपादक है किसी पत्रिका का या किसी समाचार पत्र का, वो आग्रह करे कि कुछ लिख दीजिए हमारी पत्रिका के लिए, तो उसका आग्रह आपको विवश कर सकता है। प्रकाशक के तकाजे से कि प्रकाशक बोले कि आप कुछ लिखिए हम छाप दें, तब आर्थिक आवश्यकता यानी जब आप प्रसिद्ध हो गए आपको लगता है कि आप अपने लेखन से कुछ जीवनी कमा सकते हैं, तो भी आपको विवश होकर लिखना पड़ता है। लेकिन वो कह रहे हैं कोई कृतिकार जो है वो ये ईमानदार रहता है इस मामले में कि कम से कम वो खुद से ये ना झूठ बोले कि उसने क्यों लिखा। उसे ये पता होता है, वो ये अंतर बनाए रखे कि कौन सी जो रचना है, कौन सी कृति है, वो उसकी भीतरी यानी अंदर की प्रेरणा का फल है, और कौन सा जो लेखन है या कौन सी रचना उसके बाहरी दबाव का फल है। दूसरा, कभी कभी यह भी होता है जो बाहर का दबाव होता है ना, वो वास्तव में दबाव नहीं रहता, वो जो भीतर ही हमारा उन्मेष होता है, जो हमारी प्रकाश होता है, उसका कारण बन जाता है। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जो अज्ञेय जी हैं, क्योंकि उनकी इंटेलेक्चुअलिटी बहुत हाई थी, बौद्धिक स्तर बहुत हाई था, ऊंचा था इनका, इस वजह से इनका जो लेखन होता है उसमें शब्दावली भी थोड़ी कठिन होती है और उसके भाव भी समझने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। इसीलिए आप पढ़ते वक्त इस पे ध्यान दीजिएगा, है ना। पेज नंबर 43 पर आ जाइए। अब यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व बहुत होता है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते, इसी के सहारे उनके भीतर की व्यवस्था स्पष्ट होती है। यह कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर कोई बिछौने पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म ना बज जाए। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता है, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लेता है, जिससे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे। मुझे सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ जाता हूं अपने आप ही, पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता। क्या कह रहे हैं वो? कि जो कृतिकार होता है ना उसका स्वभाव कैसा है, उसका खुद पे अनुशासन कैसा है, ये भी बहुत महत्व रखता है कि वो कैसे लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, कब लिख रहा है। क्यों? कुछ ऐसे आलसी जीव यानी कुछ जो कृतिकार होते हैं वो उनका स्वभाव इतना आलस्य से भरा होता है कि जब तक उन पे कोई बाहर का दबाव ना पड़े वो नहीं लिख पाते, है ना। अंदर से उनकी प्रेरणा नहीं जाग पा रही होती है, उनको एक सहारे की जरूरत होती है कि कोई बाहर से कुछ कहे, और इसी वजह से जब बाहर से उन्हें सहारा मिल जाता है तो भीतर की जो व्यवस्था है, जो अंदर से जो अनुभव आ रहे होते हैं वो भी फिर विवश हो जाते हैं कि अब उसे उतार नहीं पड़ते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, एक उदाहरण दे के समझाते हैं अज्ञेय जी। जैसे कोई सो रहा है सुबह प्रातःकाल, यानी सुबह सो रहा है, नींद खुल गई, लेकिन फिर भी वो बिस्तर पे लेटा है क्योंकि वो इंतजार कर रहा है कि घड़ी का अलार्म बजेगा तभी मैं उठूंगा। जग तो गया, नींद खुल गई है, लेकिन उठूंगा तभी बिस्तर से जब अलार्म बजेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपको लिखना आता है, आपके अंदर से प्रेरणा आ रही है, लेकिन आप दबाए रहते हैं कि कोई बाहर से मुझे जोर जबरदस्ती करे, कोई आग्रह करे, कोई कुछ लालच दे या कुछ मुझे समझाए कि इसीलिए लिखो तभी लिखूंगा मैं। असल में क्या होता है, इस प्रकार जो कृतिकार होता है ना वो बाहर के दबाव के लिए समर्पित नहीं होता, उसे सहायक यंत्र की तरह काम लेता है। जैसे कि ये एक मजबूरी है, ये मुझे कुछ जबरदस्ती करेगा, दबाव देगा, ऐसा करो तो ही मैं लिखूंगा। मैं तो तभी लिखूंगा जब बाहर का दबाव आए, उसका सहायक यंत्र बन जाता है। यानी बाहर का दबाव नहीं आएगा तब तक मैं नहीं लिख सकता हूँ। फिर वो कहते हैं कि मुझे इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, यानी मेरे साथ ऐसा नहीं कि मुझे कोई बाहर से दबाव पड़े तभी मैं लिखूं, मेरी तो आंतरिक प्रेरणा ही काम करती है, मुझे अंदर से महसूस होता है मैं लिखता हूँ। लेकिन बाहर के भी जो दबाव होते हैं, जैसे कभी संपादक कहीं लिखते हैं या कुछ मुझे जीवनी की आवश्यकता हो तो मैं लिखूं, तो भी मैं उसको बाधा नहीं समझता, मैं उस हिसाब से भी समर्पित होकर ही लिखता हूँ। क्योंकि अगर बाहर से भी एक दबाव पड़ रहा है या ये कहा जा रहा है कि आप लिखें, तो भी जो मैं अंदर से महसूस करता हूँ, मेरी जो व्यवस्थाएं अंदर होती हैं उन्हीं को मैं शब्दों के द्वारा कागज पर उतारता हूँ। फिर वो कह रहे हैं, अगर उठने वाली तुलना को, जो उन्होंने उदाहरण दिया था ना कि लोग उठ जाते हैं, नींद खुल जाती है लेकिन घड़ी का अलार्म बजने तक नहीं उठते हैं, वही अगर उदाहरण दें तो कहते हैं सवेरे वो अपने आप ही उठ जाते हैं, है ना। अगर नींद खुल गई तो फिर अपने आप उठ जाते हैं, लेकिन अगर अलार्म बज जाए तो इसमें भी वो हानि नहीं समझते, यानी बाहर का भी कोई उन्हें दबाव हो तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। यह भीतरी व्यवस्था क्या होती है, इसे बखानना बड़ा कठिन है। क्या वह नहीं होती, यह बताना शायद कम कठिन होता है। या उसका उदाहरण दिया जा सकता है, कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो भीतरी व्यवस्था होती है ना, अंदर से महसूस क्या होता है लेखक को, ये समझाना या बखानना, यानी इसका बखान कर पाना, इसको समझा पाना बहुत कठिन होता है। वह नहीं होती, क्या वह नहीं होती है, मतलब क्या चीज वो नहीं होती है, ये बताना कम कठिन होता है। यानी कि वो सब कुछ होता है, लगभग आपको अंदर बहुत कुछ महसूस हो रहा होता है। फिर वो कह रहे हैं कि अगर समझाना तो कठिन है, लेकिन उदाहरण देके इस बात को समझा सकते हैं ताकि लोगों को समझ में आए, ये चीज उपयोगी हो जाएगी। तो इसके लिए उन्होंने उदाहरण लिया अपनी एक कविता का। कहते हैं अगर मैं एक कविता का उदाहरण लूं फिर इस पे चर्चा करूं तो मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी, यानी साफ हो जाएगी कि क्या होती है एक लेखक की भीतरी व्यवस्था। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में वो बताएंगे कि क्या चीज होती है जो लिखने के लिए प्रेरित करती है। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुंचे जहां अणु का भेदन संभव हुआ, रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इन सब का पुस्तकीय या सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था। फिर जब वह हिरोशिमा में अणु बम गिरा तब उसके समाचार मैंने पढ़े और उसके परवर्ती प्रभावों का भी विवरण पढ़ता रहा। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। क्या कह रहे हैं, वो विज्ञान का विद्यार्थी रहे, यानी कि उनका विषय क्या था, विज्ञान पढ़ा उन्होंने और उन्होंने शिक्षा भी उसी में ली है ना, 12वीं तक भी विज्ञान को पढ़ा, फिर बीएससी करी, बीएससी का मतलब ही होता है बैचलर ऑफ साइंस, तो साइंस में उनकी रुचि भी थी, जानकारी भी थी, उनने ये सब पढ़ा था। अणु क्या होता है, अणु यानी एटम, है ना, एटम क्या होता है, रेडियम क्या होता है, कैसी उसमें किरणें निकलती हैं, कैसे लोगों ने इस अणु का भेदन किया, कैसे अणु को ढूंढा, कैसे ये इसका इजाद किया गया, कैसे इसका वजूद उत्पन्न हुआ, इसकी रेडियम धाराएं कैसी होती हैं, इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, ये सारी चीजें कह रहे हैं कि वो पुस्तकीय ज्ञान यानी जो किताबों में लिखा होता है ये सारी चीजें उन्होंने पढ़ी थी। सैद्धांतिक ज्ञान भी था। लेकिन जब हिरोशिमा में अणुबम गिरा, अणुबम यानी एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए गए थे ना हिरोशिमा और नागासाकी में, आपने सुना होगा, तो वहां पे जब जापान के हिरोशिमा में अणुबम गिरा तब उन्होंने उसके समाचार पढ़े, उसके बारे में कई खबरें पढ़ी और उसके परवर्ती प्रभाव, परवर्ती यानी कि बाद के प्रभाव यानी असर, बाद में जो उसके असर हुए वहां पे, उनके विवरण भी पढ़े यानी उनको डिटेल में पढ़ा, और तब उन्हें ये पता चला कि क्या ऐतिहासिक प्रमाण है अणुबम असल में क्या क्या कर सकते हैं, सामने प्रत्यक्ष रूप से उनके आया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो विवशता होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है और उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है, इसीलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी। यूं युद्धकाल में भारत की पूर्वीय सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंक कर हजारों मछलियां मार देते थे, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी, और जीव के इस अपव्यय से जो व्यथा भीतर उमड़ी थी उससे एक सीमा तक अणुबम द्वारा व्यर्थ जीवनाश का अनुभव तो कर ही सका था। अब क्या कह रहे हैं, जो विज्ञान का उन्होंने दुरुपयोग होते देखा कि यानी आप विज्ञान से काफी चीजें सीख गए, अच्छी बात है, लेकिन इसका दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं, बुरा उपयोग क्यों कर रहे हैं, किसी को मारने के लिए विज्ञान का उपयोग करना ये इतनी बुरी चीज थी कि जो हमारा बुद्धि हमारा ज्ञान है वो आपका विद्रोह करेगा कि ये चीजें गलत हो रही हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि उन्होंने कई लेख लिखे, कई चीजें लिखी, लेकिन अनुभूति नहीं हुई थी, उन्होंने अनुभव नहीं किया था ये सब, इसीलिए बौद्धिक पकड़ से आगे की बात, यानी वो सब नहीं लिख पा रहे थे जैसा वो लिखना चाह रहे थे, इसीलिए लेख तो लिखे उन्होंने थोड़े बहुत अपने आप को शांत करने के लिए, लेकिन कोई कविता नहीं लिखी इस विषय में। फिर वो कहते हैं कि युद्ध काल के समय यानी जब युद्ध हुए थे, विश्व युद्ध हो रहे थे, तब भारत की जो पूर्वी सीमा थी ना वहां उन्होंने क्या देखा था कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें सैनिक बम फेंक देते थे, क्यों, ताकि जो मछलियां हैं वो मर जाएं और उन्हें वो पकड़ ले और अपने भोजन के या अपनी जरूरत के काम ले सकें, आवश्यकता थोड़ी सी होती थी, यानी कि थोड़ी जैसे दो चार मछलियों से काम चल जाए, लेकिन वो पूरे के पूरी नदी की मछलियों को नष्ट कर देते थे, और जीव के इस अपव्यय से यानी जीवों के नष्ट होने से, इसके मरने से, फिजूल में ऐसे किसी की भी जान ले लेने से एक व्यथा उमड़ पड़ी थी ना उन्हें, अंदर अंदर एक तकलीफ महसूस हो रही थी, बेचैनी महसूस हो रही थी कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब गलत हो रहा है। अब वो कहते हैं इसीलिए एक सीमा तक, यानी कहीं ना कहीं उन्हें इस वाली घटना से ये अंदाजा लग रहा था कि जो अणुबम यानी जो एटॉमिक बॉम्ब्स फेंके गए हैं उसमें व्यर्थ में जीव नाश हुआ है, यानी बिना किसी वजह से जो निर्दोष मनुष्य हैं वो भी मारे गए हैं, तो उसका जो दुख है वो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि मैं अनुभव कर सका था कि क्यों बिना किसी कारण किसी जीव को मारने पर क्या होता होगा, ये सारी चीजें वो दुख कहीं ना कहीं मुझे महसूस हो रहा था। जापान जाने का अवसर मिला तब हिरोशिमा भी गया और वह अस्पताल भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है, कम से कम कृतिकार के लिए। यानी कि क्या कह रहे हैं, एक बार उन्हें जापान में जाने का अवसर मिला, जापान की उन्होंने यात्रा की, तो उन्होंने हिरोशिमा भी जाने का फैसला किया, हिरोशिमा गए और वहां पे उन्होंने अस्पताल में जाके उन लोगों को देखा जो रेडियम पदार्थ ये अणुबम से जो नुकसान हुए थे, जो उन्हें कष्ट हुए थे, उनको वो आज भी झेल रहे थे वर्षों से, यानी ऐसा नहीं थोड़े समय का नुकसान था, बहुत सालों तक वो नुकसान झेला गया था और वो लोगों के कष्ट को वहां पे देख रहे थे। अब प्रत्यक्ष अनुभव हो गया था यानी कि सामने से उन्होंने अनुभव किया कि क्या कष्ट हुआ इन लोगों को, है ना, प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया, लेकिन अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है, यानी अनुभव तो हो गया, आपने सामने देख तो ली चीज, लेकिन आपने उसे अनुभूति नहीं किया, आपने उसे महसूस नहीं किया, और महसूस करना सामने देख लेने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, कम से कम कृतिकार के लिए, यानी अगर उसे कोई रचना करनी है तो ये चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो उसे महसूस करे, अगर वो उसे सही से महसूस कर पाएगा तभी वो अपनी रचना में अच्छे से उसे बयान कर सकता है। अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है, जो आंखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है। क्या कह रहे हैं वो, अनुभव जो है वो तो घटित का होता है, यानी जो चीज घटना हो गई है उसका आपने अनुभव कर लिया, लेकिन अनुभूति क्या होती है, मतलब महसूस क्या करते हैं आप, संवेदना, दूसरे के भाव, कल्पनाएं करते हैं कि क्या हुआ क्या, ये सारी चीजें जब आप वो करते हैं तो आपको तब सत्य को आत्मसात कर, यानी आप तब सत्य क्या है उस पूरी चीज को समझ पाते हैं, जो वास्तव में कृतिकार यानी लेखक के साथ भले ही ना हुआ हो लेकिन आपने उसे महसूस किया हो। आंखों के सामने नहीं आता, अनुभव नहीं होता, लेकिन आपकी आत्मा के सामने आ जाता, यानी आपकी आत्मा उस चीज को महसूस कर लेती है, वो अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाती है, यानी भले ही आपने उसे देखा नहीं है, आपने नहीं उसे झेले जो कष्ट हैं, लेकिन आपकी आत्मा वो सारी चीज महसूस कर ले, वो सारे कष्ट आपको बता दे कि ये चीजें हुई। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 44। तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ लिखा नहीं, क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। फिर एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट के बिखरे हुए रेडियम धर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होंगी, जो आसपास से आगे बढ़ गई। उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया जो उस व्यक्ति पर अटकी, उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई। अब वो क्या कहते हैं, हिरोशिमा में तुरंत देखकर उन्हें कुछ नहीं लिखा, क्योंकि अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। अनुभव तो हो गया था लेकिन वो उसे प्रत्यक्ष रूप से महसूस नहीं कर पा रहे थे, उनकी आत्मा अभी भी सारी चीजें महसूस नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने तुरंत कुछ नहीं लिखा। फिर वो एक दिन सड़कों पर घूम रहे थे, वहां तो उन्हें क्या दिखा, एक जला हुआ पत्थर। आज भी अगर आप हिरोशिमा कोई जाने का मौका मिले तो पता चलता है कि वहां पे उन अड़ू बम्बों का कितना नुकसान हुआ होगा और जीवन कितना अस्त व्यस्त हो गया था, कई वर्षों तक संभलने में नहीं आया था। तो वहीं उन्होंने सड़क पे एक पत्थर देखा, जला हुआ पत्थर जिसपे एक उजली लंबी छाया, यानी कि किसी आदमी की परछाई जैसी बनी हुई है। तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि जब विस्फोट हुआ, बम फटा होगा, तो यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा होगा और उस विस्फोट से जो रेडियम बिखरे होंगे, जो किरणें इधर उधर बिखरी होंगी, वो उसमें फंस गई होंगी, है ना। बाकी तो आसपास बढ़ गई लेकिन व्यक्ति के अंदर फंस गई होंगी, उससे पत्थर भी झुलस गया और जो व्यक्ति पर अटकी, है ना, जो पत्थर पे पड़ी रेडियम किरणें, उससे पत्थर जल गया, बाकी किरणें हाँ वहां आसपास से गुजर गई, और जो व्यक्ति पर वो किरणें पड़ी उससे व्यक्ति उससे चिपक गया और भाप बन के उड़ गया। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी, यानी पूरी की पूरी ट्रेजेडी उस पत्थर पर लिख दी गई थी, यानी कि उस पत्थर पे समझ आ रहा था। इसी पेज पे, पेज नंबर 44 पे नीचे की तरफ आप चित्र देख सकते हैं, है ना, ये सड़कें बनी हुई है, एक पत्थर बना है बहुत बड़ा और इस पे एक आदमी का चित्र जैसा छपा है, है ना। तो इससे महसूस हो सकता है कि क्या हुआ होगा उस बम धमाके के समय, कितना करुणा वाला सीन होगा, ये हम यहाँ से देख सकते हैं। अब पेज नंबर 45 पर आइए, नेक्स्ट। उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा, अवाक इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उग गया और डूब गया। मैं कहूं कि उस क्षण में अणु विस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया, एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। अब क्या हुआ, वो कह रहे हैं जब वो छाया देखी, उस व्यक्ति की छाया उन्होंने पत्थर पे देखी, तो ऐसा लगा किसी ने उन्हें थप्पड़ मारा हो, जो इतिहास था वो ऐसा लगा उन्होंने सब कुछ देख लिया, भीतर उनके एक सूरज जला और डूब गया, है ना। तो उनको ये फिर महसूस हुआ, उन्होंने कहा कि मुझे उस अणु विस्फोट की, उस बम धमाके की अनुभूति हो गई, मैंने महसूस कर लिया कहीं ना कहीं, और एक अर्थ में मैं ये कह सकता हूँ मैंने इतनी गहराई से महसूस किया, मैंने इतनी गहराई से महसूस किया कि मुझे ऐसा लगा कि हिरोशिमा का जो विस्फोट है, वो जो बम धमाके हैं, उसे मैंने खुद महसूस किया, मैं उसका भोक्ता बन गया, यानी मैं खुद पीड़ित हूँ उससे। इसी से वह विवशता जागी, भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। क्या कहते हैं, जब उन्होंने ये सब देखा तो अंदर एक विवशता जागी, है ना, एक मजबूरी सी हुई, और भीतर की जो आकुलता थी, जो बेचैनी हो रही थी, अब वो बुद्धि से निकल के कहाँ गई थी, संवेदना यानी भावों के क्षेत्र में, विचारों से निकल के भाव में आ गई थी। और फिर धीरे धीरे लेखक ने अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकाला, अलग किया नहीं, अपने आप को बाहर निकाला, और फिर अचानक क्योंकि अब उन्हें वो अनुभूति हो गई थी, महसूस कर लिया था उन्होंने दर्द को, तो उन्होंने एक हिरोशिमा पर कविता लिख दी। वो कविता उन्होंने जापान में नहीं लिखी, कहाँ लिखी, भारत लौटकर जब वो रेलगाड़ी में बैठे थे, तब वो उस दृश्य को बार बार दोहरा रहे होंगे, तब उन्होंने ये कविता लिखी। यह कविता अच्छी है या बुरी, इससे मुझे मतलब नहीं है। मेरे निकट वह सच है क्योंकि वह अनुभूति प्रसूत है, यही मेरे निकट महत्व की बात है। वो कहते हैं कि ये अच्छी लिखी मैंने कविता या बुरी लिखी, इस बात का तो मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन ये कविता निकट सत्य है, यानी जो सच मैंने देखा, जो महसूस किया, वो सब है, अनुभूति प्रसूत है, यानी अनुभूति से उत्पन्न हुई है, महसूस जो चीजें की हैं उससे ये कविता पैदा हुई है, इसीलिए मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छी या बुरी ये आप लोग जाने, लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सच के करीब है, मेरी अनुभूति के करीब है। तो ऐसे उन्होंने समझाया कि लेखक क्यों लिखता है, उसे क्या महसूस होता है जो वो अपने विचारों को शब्दों के द्वारा कागज पे उतार देता है। यहाँ आपका जो निबंध है ये पूरा होता है। अब इसके प्रश्नोत्तर बचे हैं जो कि हम अगले ऑडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।